आज से इंशाल्लाह ताला हम ये भी देखेंगे इन द एंड कि आज हमें इसमें अमल की बातें क्या मिली हैं आज के सबक में, ठीक है? यानी हमारे लिए क्या अमल है। साथ साथ तो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन आप अपने लिए लिखेंगे एंड में कि हम हमारे लिए अमल की बात या हम क्या करें, ठीक है? तो एक हेडिंग दे के ना आप इन आयात में से निकालेंगे, नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री ये, यानी मेरे लिए क्या अमल की बात है, हमको भी छोड़ दें, मेरे लिए अमल की बात। चलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, सब एक ही हेडिंग लिखेंगे तो सही रहेगा, मेरे लिए अमल की बात। अब आप ईच आयत को देखेंगे, हर एक आयत आप देखें, आयत नंबर 60 आप निकालेंगे, आप देखेंगे मेरे लिए इसमें अमल की बात क्या है। क्योंकि हर आयत का मैंने आपको बताया, ये एक तो स्पेसिफिक माना होता है उन हालात, उन वाकयात, उस सिचुएशन, जिस वक्त ये आयत उतर रही थी उसके मुताबिक माना होता है, और एक अमूमी माना होता है जो कि हर ज़माने के लिए, हर एक लोगों के लिए होता है। तो इसमें अमूमी माना मैं अपने लिए क्या लूँगी, मेरे लिए अमल की बात, ठीक है? और वहीं से आप देखेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला हर सबक के एंड में जब आपने ऐसे लिखी होंगी तो आप देखेंगे कि इनमें से फिर मैं अपने आप को इवेलुएट कर सकती हूँ, अपना हिसाब ले सकती हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैंने जो अमल की बातें लिखी हैं अपने लिए कितनी मैं अभी तक अचीव कर सकी हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप साथ साथ इसमें आपके मुहासबे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज तफसीरें आपने लिखी होंगी गुम हो जाएंगी वो बीच में ही, अब क्या समझ आएगी कि इसमें मैंने क्या करना था। बस ठीक है, बनी इसराइल की बात हो रही है, ठीक है, उम्मत मुस्लिमा ने कुछ करना था, हमें क्या, हम तो अपनी हंडी रोटी करें घर में, हमें इससे क्या, हम तो क्लास लेते हैं बस काफ़ी है। नहीं, मेरे लिए अमल की बात। तो अब आपने ये हम का लफ्ज़ हटा के मेरे लिए कह देना, क्योंकि जब हम आ जाता है तो फिर हम बहुत सारे और लोगों को सोचते हैं और मैं फिर बीच में निकल जाती हूँ, राइट? चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही बयान जो पिछली आयात में और पिछले रुकू में चला आ रहा था वही आप देखेंगे इसमें, जो मैंने आपको जैसे बताया कि जो अल्लाह ताला ने इनकी जो ख़ताएं थी, जो इनके गुनाह थे, जो इनकी कसूर थे, उनको एक एक करके गिनवाया, फ़र्दे जुर्म जो इन पर अल्लाह ताला ने आयद फरमाई है इन दो रकूआत में। एक रुकू हम पढ़ चुके हैं, एक आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जो बाकी के इनके ऊपर जो इनके क्राइम्स थे, जराइम थे, उनकी एक लिस्ट है समझ लें, वो अल्लाह ताला ने गिनवा दी है। और इसके बाद भी आगे कुछ इनकी जो गलत इनके काम थे उनका जिक्र आएगा आगे भी, मैंने आपको जैसे बताया कि आगे ये चलता जाएगा 14वें रकू तक इनकी बातें, लेकिन आगे कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी साथ आएंगे जो हर एक के लिए जो वो है। ये कुछ स्पेसिफिक बातें यहाँ पे आई, जैसे अब मनोसलवा की बात आपने पढ़ी है, बादलों के साए की बात पढ़ी है, वो तो किसी और के ऊपर ऐसा नहीं हुआ ना, यहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिक बातें हैं, लेकिन आगे जब इंशाल्लाह इस रुकू से आगे आप चले जाएंगे तो काफ़ी वो बातें हैं जो इनके अकीदे की खराबियां थी, उनके अकीदों में क्या क्या खराबियां आ गई थी वो हम सारी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आज के जो हम आयत पढ़ेंगे पीछे से क्या रिलेशनशिप है, हमने पढ़ा था मनोसलवा की बात पढ़ी थी, अब मैंने आपको बताया था कि ये सारे वाकयात किसी एक सीक्वेंस के उसके मुताबिक नहीं यहाँ पे बयान किए गए। हम जो पिछली आयत पढ़ चुके हैं उसमें एक करिया में दाखिल होने की बात थी और कैसे दाखिल होना है वो भी बताया गया था। अब फिर वापस जाइए मैदाने ती में, हो सकता है ये बाज़ जगह पे लिखा हुआ है ये मैदाने ती का वाक्या है, बाज़ जगह लिखा है सहराए सीना का वाक्या है। बाहर क्या है, आपको मैंने जैसे बताया था कि बनी इसराइल जब फिरौन वगैरह उसकी सारी आल डूब गई समंदर में, तो उसके बाद बनी इसराइल उनसे निजात पाके दूसरी तरफ आ गए, और जब वो दूसरी तरफ आए तो अब यहाँ पे उनके लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया, मनोसलवा का भी, बादलों का भी, और ज़ाहिर है पानी का भी मसला था, तो पानी के मसले का क्या हुआ वो भी इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। اور مختصراً ان کی ہسٹری کو دیکھ لیں دوبارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا کہ 40 ڈیز تک یہاں پہ رہیں گے جائیں گے جتنا انہوں نے ٹریول کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو ایکچوئل جو ریئل ان کا کنٹری تھا وہ پیلسٹائن یا سیریا، یہ سارا ایک ہی علاقہ ہوتا تھا، تو یہ علاقہ تھا، یہاں پہ جا کے یہ اس علاقے کو فتح کریں گے اور یہاں پہ یہ رہیں گے، کیونکہ یہ یہیں سے آئے تھے، اصل وطن ان کا یہی تھا. لیکن کیا ہوا جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ یہ کام کریں. تو اس پر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوئی، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر یہ انٹر ہوتے اس شہر میں اور حملہ کرتے وہاں پہ لڑتے تو فتح ان کی تھی، ان کو یہ ملک مل جانا تھا، لیکن یہ اتنے بزدل تھے، اتنے یعنی تھوڑ دلے تھے کہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی، ان کو یہ سزا دی کہ 40 ایئرز تک یہ ایک میدان میں گھومتے رہے پریشان. 40 ایئرز تک، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. اور یہ میدان کوئی بہت بڑا رقبہ نہیں تھا، ایجپٹ اور وہ سیریا کے درمیان ہی، پیلسٹائن سیریا سارا ایک ہی علاقہ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا، ایجپٹ اور اس کے درمیان یہ تقریباً 10 مائلز کا ایک ایریا تھا جس کو کہتے ہیں میدان تیہ، تا یا اور ہا، تیہ حلوے والی ہا نہیں ہے، دوسری. تو میدان تیہ میں یا وادی تیہ جس کو کہتے ہیں، تیہ کا مطلب ہے پریشان سرگرداں رہنا. تو یہ ایک وادی تھی، اس میں ایک بس میدان سا تھا، نہ وہاں پہ کوئی درخت تھا، نہ وہاں پہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ یہاں پہ کیسے لاسٹ ہوئے؟ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور جس کو چاہے ایسا گھما دے. سبحان اللہ، کہ یہ دن بھر سفر کرتے تھے اور رات کو جب کسی منزل پر اترتے، اندھیرا ہو جاتا تھا، پتہ تھوڑی چلتا تھا کہاں پہنچے، رات کو اترتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے جہاں سے چلے تھے نا وہیں پہ کھڑے ہوئے. استغفر اللہ ربی، 40 ایئرز تک ایسے ہی یہ پریشان اس میدان میں ہی پھرتے رہے. اللہ جس کو چاہے تو دیکھو کیسا گھما دے کہ انسان اس طرح لاسٹ ہو جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے جانا کہاں. 40 سال تک وہیں چکر لگاتے رہے، کیسی اللہ کی طرف سے سزا آئی. کبھی ہمارے ساتھ ایسے ہوتا نا، ہم اچھے بھلے پتہ ہوتا ہے لیکن بس گھوم گھوم کے گاڑی پھر وہیں آ جاتی ہے، پھر وہیں آ جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، جیسے ایک اس میں انسان نا اسپائرل میں ہی پھنس گیا. تو یہ 40 ایئرز تک اس طرح سے رہے، ایک دو دن کی بات ہو تو پھر بھی ہے، ہر صبح ہوتی تھی وہیں پہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ پوری ان کی جو جنریشن تھی، جو فرعون سے نجات پا کے آئے تھے، وہ سب مر گئے، سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. اور نئی جو نسل ان کی تھی، جو بچے پیدا ہوئے تھے، وہ بڑے ہوئے، 40 ایئرز اس میں ظاہر لگے تو وہ بڑے ہوئے، تو پھر انہوں نے جا کے وہ، پھر ان کو کہا گیا جاؤ اس علاقے میں داخل ہو، وہ گئے اور پھر انہوں نے وہ علاقہ فتح کیا. تو یہ جو ہم نے پچھلی آیات پڑھی تھی، وہ دو اس میں روایات ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کے لیے ہیں کہ جب یہ نیو جنریشن وہاں پہ گئی اور ان کو کہا گیا یذقلن ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، کہ تم جاؤ یہاں سے، اس قریے میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ پیو، لیکن دیکھو اس طرح سے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے. تو وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی انہوں نے کس طرح سے چینجز کی. اور اس کے بارے میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت کا واقعہ نہ ہو بلکہ ایک اور دفعہ کا واقعہ ہو، وہ انشاءاللہ آج کی جب ہم آیات دیکھیں گے تو اس کی تفسیر میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا ایک واقعہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ کھانے پینے کا ان کا پرابلم تو حل ہو گیا، منو سلوا اتر رہا ہے، اب پینے کا کیا کریں، پانی کا کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اذ استسقى موسى لقومه، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. اب آپ یہ دیکھ لیں، دیکھیں یہ ایسی قوم تھی کہ جب ان کو پانی کا مسئلہ ہوا نا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر دوڑے گئے اور بڑی شکایتیں کرنے لگے کہ یہ آپ پانی، اور ہم پانی کا کیا کریں، اور اب ہم پیاسے ہیں. اور یہ तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी मांगा, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़कुल न दुरिबी असवाकल हजर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा, हमने किसने, अल्लाह ताला ने, मारो अपना आसा इस पत्थर को। अच्छा आप देखें, आसा मूसा अलैहिस्सलाम के पास ऑलरेडी था और आसा के ज़रिए उन्होंने समंदर को फाड़ा था, आसा ही सांप बन जाता था, आसा से ये बड़े काम लेते थे, तो वो खुद भी मार के देख सकते थे। लेकिन बात ये है, एक बात बहुत पते की यहाँ समझ आती है कि आसा इट्सेल्फ कुछ नहीं था जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो आसा मारा तो समंदर फट गया, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो आसा मारा हजर पे तो फन फजरत मिन हुस्नता आशरत आइनन, तो उसमें से फूट पड़े 12 चश्मे। तो बरकत उस आसा में नहीं है, बरकत अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला का हुक्म हो तो पानी फूट निकलता है, आसा मारने से भी पत्थर में से निकल आएगा, और अल्लाह का हुक्म ना हो तो लोग पानी के लिए तरसते फिरेंगे और पानी की एक बूंद भी नहीं नजर आएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो इस बात से हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी चीज़ को भी हम ये ना सोचें कि ये हाँ जी ये चीज़ मुतबर्रिक है और ये चीज़ ऐसे है। अल्लाह ताला के हुक्म से ही कोई काम होता है, कोई चीज़ खुद से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती किसी को, किसी चीज़ का अपना कोई कमाल नहीं होता। तो इसमें से 12 चश्मे फूटे, 12 क्यों फूटे, 12 की क्या ज़रूरत थी। 12 इसलिए कि ये 12 कबीले थे ना, आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के तो 12 बेटे थे, तो ये 12 बेटों की नस्ल ही तो थी जो आगे से ये कबाइल बने। तो उन हर एक ट्राइब के लिए, हर एक कबीले के लिए अल्लाह ताला ने एक चश्मा जारी फरमा दिया। अब हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि भाई वो चश्मा तो वहां पर फूट पड़ा, फिर वो आगे गए तो फिर आगे क्या हुआ, ये चश्मे तो एक ही जगह रह गए ना। कहते हैं आज भी इन चश्मों के सुराख पत्थर में मौजूद है वहां पे, जहाँ से ये 12 चश्मे फूटे थे। तो इसके बारे में बहुत सारी रिवायात आती हैं, जस्ट आपकी एक दिलचस्पी के लिए बता देती हूँ, अदरवाइज इससे हमें कोई भी हमारे अमल को नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कैसे उनका पानी आगे गया। कि एक इब्ने अब्बास से एक रिवायत है कि पत्थर जो था वो इतना सर के बराबर, इंसान के सर के बराबर बड़ा था, तो वो पत्थर उठा के ले जाते थे और जहाँ पे वो पत्थर रख देते थे तो फिर से चश्मे फूट पड़ते थे, फिर पानी ले लिया करते थे। इस तरह से जैसे चलते जा रहे हैं और साथ फिर पानी भी इनका अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमा दिया। तो देखें क्या हुआ, कद आलिमा कुल्लू उनासिन मशरबहुम, तहकीक जान लिया हर लोगों ने, हर ग्रोह ने, मशरबहुम अपने पीने की जगह को, यानी बच्चा बच्चा जानता था कि उसके पीने की जगह कौन सी है। सोचें जरा कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी और कितना डिसिप्लिन था कि हर एक, इतना बड़ा काफला है लेकिन हर एक को पता है अल्लाह ताला ने 12 चश्मे इसलिए वहाँ से जारी किए थे कि आपस के अंदर इनके कोई भी फसाद झगड़ा ये ना पैदा हो, क्योंकि ये पानी वगैरह है ना, इसके ऊपर बहुत झगड़े होते हैं, तो इसके ऊपर ना कोई झगड़ा हो, इस वजह से अल्लाह ताला ने 12 चश्मे वहाँ से जारी फरमा दिए और हर एक को पता है कि मेरा पानी पीने की जगह क्या। अब इससे हमें उनकी ऑर्गेनाइजेशन का भी इल्म होता है कि वो कितने ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे कोई बड़े भी चश्मे थे, छोटे भी चश्मे थे, तो जिन कबाइल के अंदर ज़्यादा अफराद थे, जो बड़े बड़े कबीले थे, उनके लिए बड़ा चश्मा था, छोटे के लिए छोटा था। ये भी कहा जाता है कि हर एक कबीला इस तरह जान गया था कि एक एक आदमी पत्थर के पास खड़ा रह जाता और लकड़ी लगते ही इसमें से चश्मा जारी हो जाता तो ये चश्मा उसका होता, ठीक है। वो अपने कबीले को बुला के कह देता कि ये चश्मा हमारा है। और आप आगे इंशाल्लाह ताला सूरह आराफ में भी इस वाक्य का बयान आएगा, आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी वाक्य को। अच्छा तो इससे देखिए एक बात बड़ी दिलचस्प है कि सुभान अल्लाह, उनके तो एक एक बंदे को पता चल गया कि हमारा मशरब कहाँ है, लेकिन पानी और इल्म में ना बड़ी मुमासलत है। पानी के जारी हो ना, और इल्म, इल्म भी पानी की तरह ही है। तो हमें भी मालूम होना चाहिए, हमारे जो जो आपकी क्लास में आपके ग्रुप्स बनाए गए हैं, आपके जो जिस तरह से आपको कहा गया है कि किस तरह किस टाइम पे किस नंबर पे आपने जाना है, आपको भी पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। ठीक है, वो लोग कितने ऑर्गेनाइज है, ये किसी जगह की या किसी लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का इससे पता चलता है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं है इल्म है कि कहाँ पे क्लास होती है, किस नंबर पे होती है, कहाँ पे रिपीट होती है, ग्रुप किधर लेना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वैसे ही बैठे हुए, देखो उनके अंदर कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू, खाओ, व शरबू, और पियो, मेरे रिस्क अल्लाह, अल्लाह के रिस्क से, यानी अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे खाने पीने के लिए ही जारी किया। खाओ मनोसलवा और पियो इस पानी को, इससे मना नहीं किया गया, खाने पीने से अल्लाह ताला मना नहीं फरमाते। देखें ये बात बड़ी समझने की है कि बाज़ दफ़ा हम दीनदारी इख्तियार करते हैं या बड़े तकवा वाले बनते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि हम बस खाने पीने को हम जो है ना छोड़ देंगे तो ये तकवा है, ये ना हमने अच्छा खाना है ना अच्छा पहनना है, तो इसका मतलब बस मैं नेक हो गई। अल्लाह ताला आपको खाने पीने से थोड़ा ही रोकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने किस चीज़ से रोका है कि खा पी के क्या ना करो फिर, वला तअथौ फिल अर्दी मुफसिदीन। असल में खा पी के जब इंसान का पेट भर जाता है ना, तो फिर क्या होता है, फसाद करता फिरता। खाली पेट इंसान को फसाद नहीं सूझते, जब भरा पेट भी शैतान का घर हो जाता है, फिर वो फसादी बन के फिरता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खाओ पियो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क दिया, और ये मेरे रिस्क ला है अल्लाह के रिस्क से, यानी ये रिस्क जो है ना ये तुम्हारी अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। लेकिन याद रखना, तुम जमीन में फसादी बन के ना फिरो। फसाद कैसे होता है? फसाद ऐसे होता है जब इंसान किसी पे जुल्म करता है, किसी को उसका हक नहीं देता, खराबी पैदा करता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ तो बड़े अच्छे तरीके से आप फसाद देख सकते हैं कि जब भी लोगों को कोई बात पसंद नहीं आती तो कैसे फसाद करते हैं, इमारतों को आग लगा देते हैं, है ना, गाड़ियों को तोड़ फोड़ देते हैं, लोगों को अंदर बैठे हुए साथ ही जला देते हैं, तबाहियां मचाते हैं, कोई चीज को सलामत नहीं रहने देते, कितनी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो फसाद करते फिरते हैं। तो फसाद में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसमें इंसान जब नाशुक्री करता है, हिर्स करता है, लालच, बेसब्री करता है, तकब्बुर करता है, ये सब फसाद की किस्में हैं। नाशुक्री भी फसाद है, याद रखिए। जब इंसान जिसका दिया हुआ खाता है उसका शुक्र ना अदा करे तो वो फसाद है, जब इंसान सबर ना करे ये भी फसाद है, जब इंसान कनात नहीं करता, जितना उसको मिला है उसके ऊपर नहीं और की हविस रहती है, तो ये फसाद बर्पा करता है। जब इंसान के अंदर खा पी के आजी ना आए तो ये फसाद है। तो उनको मना किया गया, तुम खा पी सकते हो, खाना पीना मना नहीं है, मगर याद रखो फसाद ना करना। हम खाने पीने में तो कमी कर लेते हैं, लेकिन फसाद इंतहा दर्जे का, जमीन में फसाद कर रहे हैं, घर घर में फसाद है। बाज़ लोग फसाद करवाने के लिए और फिर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे भड़काते हैं कि फसाद पैदा हो। तो फसाद करने से, फसाद मचाने से मना किया अल्लाह ताला ने। इधर की बातें उधर पहुंचाना, उधर की उधर कर देना, चार लगा के इसको बता देना, लगाइयां बुझाइयां करना, ये सब फसाद ही तो है। तो वला तअसौ फिल अर्दी मुफसिदीन, अल्लाह की जमीन के ऊपर अमन के साथ रहो। फसाद का उलट क्या है? इसलाह, इसलाह करो, फसाद ना करो। मगर उन्होंने फसाद किया, कैसे किया उन्होंने फसाद, वो अगली आयात में आ रहा है। पहले यहां तक इंशाल्लाह ताला, बल्कि पूरे सबक की तिलावत लगाइए इंशाल्लाह।
وَإِذِ اسْتَسْقَى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اب ان کا پانی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کھانے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا تو اب انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں آگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طُعَامٍ وَاحِدٍ ہم نہیں صبر کر سکیں گے ایک کھانے پر ہم نہیں صبر کر سکتے ایک ہی کھانا ہم کھائے جا رہے ہیں وہی من وہی سلوا ایوری ڈے سیم ہی چیز اوور اینڈ اوور اگین تو یہ ہم سے نہیں کھایا جاتا روز روز فتح اولانا اور ابا کا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے آپ اپنے رب سے دعا کریں یعنی جیسے کہ وہ ہمارا تو ہے نہیں آپ کا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہی دعا کریں یخرج لنا مما تنبت الارض کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو بھی زمین اگاتی ہے من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا ایک پوری لسٹ دے دی ہمیں سبزی بھی چاہیے ہمیں یہ ککڑی کھیرے ککمبر یہ بھی چاہیے ہمیں لہسن بھی چاہیے مسور بھی چاہیے پیاز بھی چاہیے جس کو آپ کہہ دیں گے دال چاول یا مسالے یا یہ جو پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ ان سے تو سالن بنتا ہے نا تو سالن کی چیزیں چٹخارے تو کیا اب انہوں نے کہا اچھا چونکہ یہ لمبی آیت ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں جیسے اوپر آپ نے لکھا لن نصبیرا بس اتنا سا لکھ کے آگے اینڈ تک مثلا مثال کے طور پہ ربک ہے یہاں تک آپ کر لیں کہ اس کے ایکسپلینیشن اس کے نیچے پھر آگے یو خرج لنا صرف دو لفظ لکھ کے اس کے نیچے پھر سارا اس کی ایکسپلینیشن ورنہ آپ لاسٹ ہو جائیں گے کہ آیت میں کہاں پہ کس بات کی تفسیر ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی منو سلوا کی اور یہ کیسی نعمت تھی کہ سبحان اللہ نہ ان کو کوئی محنت کرنی پڑتی تھی نہ کوئی کمائی کرنی پڑتی تھی نہ کہیں سے لا کے جیسے آپ کو گروسری کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے کوئی بازار جانا پڑتا ہے کہیں کوئی ہل جل کرنی پڑتی کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا وہ تو سلوا آ کے تو ان کے آگے سامنے خود ہی گر جاتے تھے تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے وہ جو من تھا وہ بھی صبح کو اٹھتے تھے تو وہ سامنے سارا وہ بکھرا ہوتا تھا اس کو لے کے کوٹ لیتے تھے اور اسے بنا لیتے تھے اپنا کھانا تو کچھ بھی محنت نہیں تھی کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں ہلانے پڑ رہے تھے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اتنا فری فار آل چیزیں دی ہوئی تھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ چاہتے تھے کہ ان کی تربیت ہو ان کو اپنی اس معاش کی فکر سے آزادی ملے کیونکہ ان سے بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا دین کی जो जिम्मेदारी है दीन के रिप्रेजेंटेटिव ये बनने वाले हैं, यानी ऐसा काम के उस मनसब पे वो जो बड़ा ऑनरेबल एक डेजिग्नेशन है उस पे ये फाइज होने वाले थे। और वो क्या काम था? दीन का काम, दीन आगे पहुंचाने का काम। इतने आला मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इनको चूज किया था। ये अभी नहीं चूज हुए, अभी तो ये चल रहे हैं ना, ये जब इनको तौरात मिली है ना तब ये उम्मत बने हैं, उससे पहले थोड़ी इस तरह से हैं कि भाई तौरात इनको मिली फिर इनके पास एक शरीयत आ गई, अब इसको लेके आगे चलना है इन्होंने। तो अब ये उस वक्त ये चुनी हुई उम्मत बन गए। तो जिस उम्मत ने अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाना हो, अल्लाह ने इस ऑनरेबल काम के लिए उनको चूज किया हो, वो फिर किस में पड़ गए? वो लिस्टें दे रहे हैं जी हमें तो ये चाहिए, वो ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। वहां हमें तो बकल भी चाहिए और हमें फूम भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हमसे तो नहीं यही सिर्फ खाना खाया जाता। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये तुम्हारे सारी फिकरात और जरूरियात पूरी फरमा दी ताकि तुम्हें कोई ऐसी परेशानी ना हो, कोई ऐसी मुश्किल ना हो और तुम्हारा इसके अंदर वक्त ना लगे। उसकी बजाय अब तुम जाओ और अपनी तुम्हारी तरबियत हो। तो अब लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी गुलामी के उस दौर के खानों को याद कर रहे हैं जिसमें चटखारे थे। एक बात मुझे बताइए, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई वक्त अगर आपके ऊपर कोई गम का गुजरा है, कभी याद करते हो आप कोई बहुत परेशानी का, कोई बड़ी यानी आपकी लाइफ का कोई बहुत ही टेरेबल टाइम था वो, तो क्या आप उसमें जहाँ पे आप रहते थे या जहाँ पे जो आप उस जमाने में करते थे, क्या उन चीज़ों को याद कर करके बड़ा कहते हैं कि हाँ ये काश वैसा ही हो जाए और फिर मैं वहाँ पे रहूँ? नहीं, आपको तो उस जगह से भी नफरत हो जाती है, उन चीज़ों से भी, उन बल्कि उन कपड़ों से, उन वो आप कहते हैं हाय ये चीज़ तो मुझे वो टाइम याद करा देती है, मेरा दिल भी नहीं चाहता इसको देखने का, है ना, वहाँ पे मेरा जाने को भी नहीं दिल चाहता क्योंकि मुझे वो याद आ जाता है, वो टाइम जो मेरे ऊपर उस वक्त गुजरा था। ऐसा होता है ना? आप सोचें ये बकल किसा और फूम और ये आदस और ये बसल, ये इनको डेजर्ट में थोड़ी याद आ गया कि भाई इनको डेजर्ट में तो कुछ भी नहीं था, इनको ये कहां से याद आया? ये इनको मिस्र में मिला करता था, ये वहां पे ये चीजें खाया करते थे, ठीक है। अब ये उसको याद कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? क्या ये उस जमाने को याद कर रहे हैं जो इनकी गुलामी का जमाना था? बेसिकली तो उसको याद कर रहे हैं ना जो दुख वाले दिन थे। सोचिए आप जरा, उस टाइम से तो इनको नफरत होनी चाहिए। मसलन कोई कहे वो जेल में जो खाना मिलता था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, दिल चाहता वैसा ही दोबारा खाऊं, नहीं वो कहेगा हाय हाय मुझे तो वैसी चीज भी सामने आती है तो मुझे इससे भी नफरत होती है, मुझे तो वो बताओ भी नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये उस गुलामी के दुख देने वाले दिनों के खाने को याद कर रहे हैं, तो गोया ये उस गुलामी को याद कर रहे हैं, इस प्राइसलेस आजादी की इतनी थोड़ी सी कीमत इनको देनी पड़ रही है कि इनको एक ही खाना खाना पड़ा। ठीक है कोई तंग आ सकता है खाने से, लेकिन ये भी तो देखो कि ये इस प्राइसलेस प्राइसलेस आजादी इतनी प्रेशियस है, फ्रीडम जो होती है, आजादी जो होती है ये तो तुम्हें मिली है ना इसके साथ, इसका एक खाना भी रोज रोज तुम खाओ तो तुम्हें तंग नहीं आना चाहिए और कभी भी नहीं याद करना चाहिए उस वक्त को जिसमें तुम गुलामी में थे, तुम्हारे बच्चों को जिबा किया जाता था, तुम ये चटखारे तो खाते थे ये याद नहीं है, तुम्हारे बच्चे उस वक्त जिबा होते थे, लेकिन ये उसको याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पता है आपको, जब कोई कौम ना जहनी तौर पर गुलाम हो जाती है ना तो ऐसा होता है। जिस्मानी तौर पर तो ये आजाद हो गए हैं, फिजिकली तो आजाद हो गए हैं, मेंटली ये अभी तक गुलाम है। जैसे हम हैं, सुभान अल्लाह, हम अंग्रेज से फिजिकली आजाद हो गए, हमारे मुल्क आजाद हो गए, लेकिन हम जहनी तौर पे उनके गुलाम ही रहे और आज तक उनके गुलाम हैं कि उनकी हर चीज को हम ऐसे देखते हैं, ऐसे हसरत भरी नजरों से, हर चीज से उनकी मोहब्बत करते हैं, उनकी बनाई हुई चीजें हमें इतनी पसंद हैं और उनके तरीके हमें इतने पसंद हैं जिनके गुलाम रहे। क्योंकि जो गुलाम कौमें होती हैं ना वो गुलामी कर करके ऐसी हो जाती हैं, गुलामी की आदी हो जाती हैं वो। जैसे मसलन जिनको कोई साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत पता होगा, आपको पता है जो जिन जो जिन औरतों को अब्यूज़ किया जाता है, जिन औरतों को घरों में मार पड़ती है, वो इसकी इतनी आदी हो जाती है ना कि फिर वो कंप्लेंट ही नहीं करती, वो आके नहीं बाहर बताती, वो उसकी आदी हो जाती है, मेंटली मफलूज होते जाते ना, उसकी टॉर्चर की आदी हो जाना। तो ये उस टॉर्चर के आदी हो गए थे, ये उस जगह के आदी हो गए थे, इनके जहन ही गुलाम हो गए थे। तो अब ये उस गुलामी को गोया दोबारा मांग रहे हैं, जब किस्सा और फोम और बकल और ये मांग रहे हैं, ये उस गुलामी को मिस कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई यहां पे, दूसरा आपको इनका मिजाज क्या पता चला, एक तो मैंने आपको हां बेसब्री की इनकी बात बताई कि इनके अंदर सब्र नहीं था, दूसरी आपको क्या बात बताई कि ये जहनी गुलाम हो गए थे, फिरौन के टॉर्चर के ऐसे आदी हो गए थे कि उसी टॉर्चर में वापस जाना चाहते थे। अब कई ऐसी औरतें होती हैं वो अब्यूज सह सह के इतनी उसकी आदी हो जाती हैं कि वो उसी में कंफर्टेबल हो जाती हैं, वापस उसी में जाना चाहती हैं। तीसरी क्या बात है कि इनके मिजाज में क्या है, चेंज चाहिए, चेंज। आप देखते हैं पहले भी इन्होंने क्या किया था, अल्लाह के कलाम को बदल दिया, ये पहले बात हमने पढ़ी है ना कि इनकी इन्होंने अल्लाह के, इसीलिए तो वहां पे आया ना वला तश्तरू भी आया थी समन अन कलील, अल्लाह के कलाम को चेंज कर देते थे थोड़ी कीमत पे। अब यहां पे क्या, खाने में हमें चेंज चाहिए। तो बाज दफा जो लोग चेंज के इतने आदी हो जाते हैं कि बस हमें तो चेंज चाहिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है इनके अंदर कि जो काम करना है उस पर फोकस करें, ये भी जवाल याफ्ता कौमों की एक साइन होता है कि कोई काम टिक के नहीं कर सकते, कन्विक्शन के साथ नहीं कर सकते, ऑलवेज दे नीड चेंज। हम बस इससे उकता गए, इससे बोर हो गए, कोई काम शुरू तो कर लिया बड़े जज्बाती होके, इस्तकामत नहीं है, जिसके अंदर इस्तकामत नहीं होती ना, याद रखें उसको कोई काम मुकम्मल कर नहीं सकता, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि कामयाबी के लिए शर्त क्या है, इस्तकामत, जम के चलना। आप देखें जिस दिन आपको नर्सरी क्लास में दाखिल कराया गया था, अगर आप उस दिन ये कह देती ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं चल सकती, मैं तो बोर हो गई हूँ स्कूल से, अब मुझे नहीं, मैं स्कूल जाना, और घर बैठ जाती तो पढ़ सकती थी क्या कभी? जिस दिन आपने ड्राइविंग सीखी, जिस दिन पहले दिन गाड़ी में बैठी, उस दिन अगर आप ये कहती कि ये तो बड़ी मुश्किल है चलानी, मुझे तो आ ही नहीं रही, मैंने नहीं आप चलानी, तो सीख सकती थी गाड़ी चलाना? कुकिंग आप करती हैं, अगर आप बीच में ही उकता जाएं, मैं तो बोर हो गई हूँ, सालन भूनते भूनते बनाते बनाते चलो अब ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो सालन पक जाएगा क्या? कोई भी काम जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी से ना करें कामयाबी नहीं हो सकती। आप यहाँ पे आए हैं, आप थोड़े दिन में कहने लगे आए, अब तो अब जज्बाती होके एक दिन को दर सुन के कोई बतावा प्रोग्राम सुन के शुरू तो कर ली क्लास, हाय हाय अब किस मुश्किल में हम फंस गए, अब चलो अब दौड़ने के बहाने ढूंढें, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, वी वॉन्ट चेंज ऑल द टाइम, जम के कोई काम कर ही नहीं सकते, इधर से दौड़े और चलो कोई और कोई कोर्स शुरू हो रहा है वहां पे जाते हैं, वहां पे शुरू कर दिया, कई लोग वो 10-10 कोर्सों से निकले होते हैं, अभी यहाँ पे भी शुरू किया हुआ, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे तीसरे पारे तक करके फिर कहीं और जाके वहां पे पहले पारे से शुरू कर दिया, फिर वहां पे भी नहीं टिकेंगे ऐसी बात नहीं है, फिर वहां से भागे कहीं और तीसरी जगह चले गए, हर जगह वो उन्होंने अपने पांव अटकाए हैं और किसी जगह भी पार नहीं है, कहीं पे भी पूरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं। जो इंसान चलता रहेगा वही तक मंजिल तक पहुंचेगा, जो यहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के वहां, वो कैसे चल सकता है, वो कैसे पहुंच सकता है मंजिल तक? आम जिंदगी के असूलों से भी ये याद रखें बात, तो ये तो ये कुरान है, आप इसे सोचते हैं कि ऐसे ही आपको आ जाएगा, तो अब बोरियत हो गई, अब उकताहट हो गई, अब ऐसे हो गया, अब क्या करूं, अब बहाने ढूंढूं कि किसी तरह बस निकल जाऊं। तो ये देखें इन लोगों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, इसकी इनको सजा बड़ी सख्त मिली है आगे आयत में, ये तो अभी मैं आपको बता रही हूं कि इनके कसूर क्या क्या हैं, जिसके ऊपर इन द एंड अल्लाह ताला ने बता दिया कि बस दैट्स इट, इनफ इज इनफ नाउ, ये इनके कसूर गिनवाए जा रहे हैं। तुम्हें अल्लाह देखो आसमान से तुम्हारे लिए गिजा उतर रही है, मन आसमान से आ रहा है, सलवा आसमान से आ रहा है, तुम जमीन से उगी हुई चीजें मांग रहे हो, قال كها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو کم تر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے, یعنی جو ادنا ہے. ادنا کس کو کہا؟ یہ جو سبزی ہے, ککڑی ہے, لہسن ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں, یہ نہیں ہے. مگر ایز کمپیئر ٹو منوسلوا کیا ہے؟ یہ ادنا ہے, وہ بہتر ہے. کیسے بہتر ہے وہ؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی, وہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص ان کے لیے اتارا گیا ہے. کتنی آسانی ہے اس میں, اور پھر آسمانی غذا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں, ہمیں یہ چاہیے. وہ تو ہمیشہ تب بھی نہیں ملنا تھا, منوسلوا ہمیشہ تھوڑی مل سکتا تھا. لیکن جتنے دن ملتا اس کو صبر, شکر اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے. لیکن انہوں نے دوسرا رویہ اختیار کیا. اچھا, ایک بات یہاں پہ بہت سمجھنے کی ہے, بہت گہری آیتیں ہیں. یہ تھا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کہ انہوں نے کیا 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 کیا, ہر دفعہ یہ باتیں آ رہی ہیں. کبھی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لو اب تم ہمیں یہاں پہ لے آئے ہو, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون آ رہا ہے, اچھا تم نے ہمیں لا کے پھنسا دیا. کبھی ان کو کہتے ہیں لو اب ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے, ہمارے پانی کا کوئی انتظام کرو. کبھی کہتے ہیں لو کھانا ہی نہیں ہے, اب ہم کیا کریں, دھوپ اتنی ہے, اب ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. کبھی جب ان سے کہا جاتا ہے داخل ہو جاؤ اس میں قریا میں, تو کس طرح سے داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اعلیٰ مقصد کے لیے چوز کیا. یہ کیا مانگنے لگے ہوئے, کس طرح تنگ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں, آگے بہت سارے واقعات آپ پڑھیں گے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر دیا تھا, ادھر وہ تور پہ گئے ہیں تو رات لے نے پیچھے یہ بچڑے کی پوجا کرنے بیٹھ گئے. ابھی پار ہو کے آئے ہیں سمندر سے تو دیکھا ایک قوم کو کہ وہ اپنے بتوں کے آگے طواف کر رہے ہیں, ان کا چکر لگا رہے ہیں ان کے گرد, تو یہ کہنے لگے ہمیں بھی ایک بت بنا دو نا موسیٰ. ایسا کیسے لوگ تھے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ, سبحان اللہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی دیے, وہ ایسے ہی نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے, ایسے ہی نہیں بنے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال, کہ ابو بکر صدیق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے ہیں مدینہ کی طرف, ہجرت کر رہے ہیں, غار ثور پہ پہنچے ہیں, تو فرمایا ہے آپ اندر داخل نہ ہو, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جا کے اندر دیکھتا ہوں, اگر اندر کوئی چیز ہوئی, کوئی موزی چیز ہوئی, تو پہلے میرا واسطہ اس سے پیش ہے. یعنی مجھے کوئی چیز نقصان دینی ہو تو مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھے نقصان دے دے, مگر آپ کی تکلیف مجھے گوارا نہیں ہے. یہ اندر گئے ہیں, غار کو صاف کیا, جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا, دو سوراخ کھلے رہ گئے, تو ان پر اپنے پاؤں رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے اور سو گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کسی چیز نے کاٹ لیا اس سوراخ میں سے, کوئی سانپ تھا تو سی تک نہیں نکلی, مگر آنکھ کے آنسوؤں کے اوپر تو نہیں نہ کسی کا بس, تو آنکھ سے جو آنسو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, مجھے کسی چیز نے ڈس لیا. کتنا ریگارڈ تھا, کتنا احترام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو تکلیف جاتی رہی, اور ابو بکر صدیق وہ اجر لے گئے جو کوئی اور نہیں لے سکتا تھا. پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ, حضرت مقداد ہیں, اللہ اکبر, مقداد بن اسود, ان کی بات دیکھیں. ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کو ان کی قوم نے دیا تھا, کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑیں, اور ہم نہیں لڑ سکتے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم تو آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے. یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنی خوبصورت مسکراہٹ آئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی رونق کو دیکھ کے میرا جی چاہا کہ میں اپنی ساری عمر کی نیکیاں مقداد کو دے دوں. ساری عمر کی نیکیاں، اور میں ایسا کام کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری بات سے ایسے پر رونق ہو جائے، سبحان اللہ، ایسے کھل اٹھے میری بات سے، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو فدا ہو جانے والے ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہو نا تو تب ایسا نہیں انسان ہو سکتا، جب اصل میں دنیا کی محبت رخصت ہوتی ہے نا دل سے، تو وہ اس کی جگہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس اس حبلہ درخت کے پتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر صحابہ جاتے اور کئی بار راستے میں ایسا ہوتا تھا صرف ایک کھجور ملتی تھی، اور وہ صحابی، ایک ایک صحابی کو ایک ایک کھجور دی جاتی تھی، وہ اس کو چوستے تھے اور کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیتے تھے، دوسرے ٹائم پھر اس کو نکال کے چوس لیتے تھے، پھر وہ ختم ہو جاتی تھی اس کی گٹھلی چوس لیتے تھے، اور اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور وہ کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ فرماتے ہماری باچھیں، یہ جو ہمارے یہ نا چیکس ہیں، یہ زخمی ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے تھے کہ شیب ابی طالب میں دیکھیں آپ کہ وہاں پر 3 سال تک چمڑا بھی کھایا، پتے بھی کھائے، کچھ اور کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، اور پھر بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور حال یہ ہو گیا تھا بھوک کے مارے، کیونکہ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں نا، بچوں اور عورتوں کی آوازیں جو تھیں وہ گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھیں رونے کی، کہ ان کے پاس بمشکل کوئی چیز کھانے کی نہیں پہنچتی تھی، کوئی چیز تھوڑی سی پہنچ جاتی تھی کبھی کبھار، مگر انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے کہ ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں وہ چاہیے، یہ کیا ہم آپ کی وجہ سے اب بھوک مارے ہمارے بچے بلک رہے ہیں، ہماری عورتیں رو رہی ہیں، ہمارا کیا حال ہو گیا، حضرت خدیجہ کتنی مالدار عورت تھی، اور ایک پیالہ تھا ان کے پاس، وہ بھی بعد میں ٹوٹ گیا تھا، ایک پیالہ تھا، اتنا مال تھا ان کے پاس کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے، کچھ لوگوں کا حال، ان کی غربت دیکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین گھر پہنچے تھے، تو پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غمگین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ بتائی تو انہوں نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو بھی اشرفیاں نا ساری لے آؤ، وہ ساری اشرفیاں لے آئے، گولڈ کوائنز تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا اونچا ڈھیر تھا، ایک پہاڑ سا لگ گیا، دیکھیں اتنا مال تھا ان کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کیا حال ہو گیا تھا کہ وہاں پہ بیمار پڑ گئی تھی، پھر بعد میں ان کا انتقال بھی اسی طرح سے ہو گیا تھا، اتنی مالدار تھی، نہ عورتیں، نہ بچے، نہ مرد، نہ بوڑھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ شکایت کی ہو کہ ہم نہیں یہ کھا سکتے، ہائے ہم کیسے یہ، اور پتوں پہ ہم گزارا کریں، اور دیکھیں ہمارے پر یہ مصیبت آپ کی وجہ سے آئی ہے، بس جب سے آپ آئے ہیں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمیں تو یہ چاہیے، دعا مانگے نا اپنے اللہ سے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، جیسے یہ کہہ رہے تھے وہ بھی کہہ سکتے تھے، فضل نہ ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگے، یعنی وہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اس کا کام ہے نا ہمیں یہاں پہ لے کر آیا ہے، یہی مانگے نا ہمارے لیے دعا، یہ ٹیک کیئر کرے ہماری ساری چیزوں کی، پانی ہمیں لا کے دے، ہمارے لیے کھانا کرے، اور اب یہ نہیں ہم سے ہوتا، اب کچھ اور ورائٹی چاہیے ہمیں، تم مانگو، اس لیے کہ ان کا خود کا تو تعلق کوئی مضبوط تھا نہیں اللہ کے ساتھ نا، جس کا خود کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نا وہ اللہ کے آگے خود گر جاتا ہے، اور جس کا تعلق نہیں مضبوط ہوتا وہ دوسروں کو جا کے کہتا ہے آپ دعا کر دینا ہمارے لیے، آپ دعا کر دیں، اس لیے کہ تم نے خود تو کبھی آج تک دعا مانگ کے نہیں دیکھی، تم نے کبھی اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اب انسان گلٹی کانشس ہوتا ہے نا، اب کیسے مانگوں، یا پھر سستی اتنی ہے کہ ہم کیوں مانگے ہیں، یہی ہمارے لیے مانگ دیں، آ جائیں ان کو بلا لیں یہ دعا کرا دیں گی، کیونکہ دعا بھی ہم خود نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں آتا ہی نہیں، ना दुआ करना आता है, ना आज तक हमने मांग के देखा, बस कोई कर दे हम पीछे आमीन कहते रहे, दैट्स इट, हमें नहीं आती दुआ मांगनी। वो भी कहते थे आए मूसा तुम मांगो ना अपने रब से, निकाले ना वो हमारे लिए। कितनी डिसरिस्पेक्ट है इसमें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से कभी किसी ने ऐसे कहा? आपके साथी कैसे सबर का पैकर थे और ये कौम कैसी थी? तो एक एक बात को आप देखें, सहाबा ने देखिए आला को अदना पे प्रेफर किया, आला को अदना पे, इन्होंने क्या किया? अदना को आला पे। और ये सिर्फ खाने पीने की हद तक नहीं होता, सिर्फ खाने पीने का मसला नहीं है, पूरी लाइफ में आप देख ले हमारी जिंदगियां बता रही हैं कि हमने कैसे अदना को प्रेफर किया हुआ आला पे। पूरी लाइफ हमारी ये कहती है अतस्तबदिलून अल्लदी हुआ अदना बिल्लदी हुआ खैर, ये हमारी पूरी लाइफ की जो पूरी दिन की एक्टिविटीज है ना वो ही बता रही हैं। हम हर जगह अदना को आला पे प्रेफर कर रहे हैं। कैसे? पता है कैसे? जो वक्त हमारा आखरत कमाने में लगना चाहिए उसे हम बाजारों में लगा देते हैं, जो वक्त हमारा कुरान के साथ स्पेंड होना चाहिए उसको हम किचन में नित नए रेसिपीज ट्राई करने में लगा देते हैं। अल्लाह का कलाम, उसकी तालीम, इसका सीखना, इसका सिखाना, ये सब आला है और दुनिया जहान के बाकी मशगले तो अदना है। हम उन अदना के पीछे आला को छोड़ रहे हैं, दुनिया जहान के शौक हम पाल लेते हैं मगर इस आला को वक्त नहीं दे पाते। आज हमारा सबका क्या यही हाल नहीं हुआ वा? खाने पीने के चक्रों में हम ऐसे पड़े हुए हैं कि सारी जिंदगियां हमारी गुजर जाती हैं, हमारे पास इस किताब के सीखने का वक्त नहीं होता। जैसे उनको खाना प्रेफर कर रहे हैं वो, अल्लाह अकबर, खाने को उन्होंने नंबर वन बनाया हुआ। तुम्हारी तो अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारी तरबियत दी जाए तुम्हें, ये तुम्हारे पास टाइम है। वहां पे तो गुलाम ही रहे थे, वहां पे उनकी क्या तरबियत हुई थी? अब तुमने भाई जाना है एक जगह पे, तुम जाओगे वहां पे, तुम देखो उसको कॉन्कर करोगे, वहां पे फतह करोगे, फिर उसके बाद तुम वहां पे दीन फैलाओगे, तुम्हारा ये काम है, तुम्हें अल्लाह ने इतना बड़ा मनसब दिया है और तुम क्या, नहीं हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए। आज देखे आज मुसलमान फूड कॉन्शियस कितने हैं, इस कदर है कि अगर आप कहीं दर्श रख लेना पहले ये लिस्ट बनने लगती है खाने में क्या होगा। एक शहर में देख ले रेस्टोरेंट कितने हैं और कुरान के सीखने सिखाने के इदारे कितने हैं। सुबह होती है खवातीन को फिक्र क्या होती है, आज पकाएं क्या, गोश्त में क्या होना चाहिए और सब्जी की कौन सी डिश होनी चाहिए, और फिर ये भी डिसाइड होना ना मीठे में क्या हो, दोपहर को क्या हो और रात को क्या हो। ऐसे लोग फिर कौन सा आला मकसद पा सकते हैं जो पेट की पूजा में ही लगे रहते हैं, शाम की चाय में क्या होना चाहिए। कितने लोग ये बात करते हैं कि कुरान का मेरा क्या होगा, मेरा उसका टाइम कहां से निकलेगा, नहीं घर के काम कैसे होंगे। अदना 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 पे गिरे चले जाते हैं, आला को छोड़ देते हैं। जब इंसान इन्हीं कामों को अपनी नंबर वन प्रायोरिटी बना लेगा तो फिर बताएं आला के लिए कौन वक्त निकालेगा। किसी ने कहा कि अभी पिछले दिनों ही कहीं दर्स पे मैं गई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे तो इतने लोग आते हैं, हर वीक दर्स होता है, लेकिन बात यह है कि वंस अ मंथ हम खाना भी देते हैं। जिस वीक में हमने खाना देना होता है ना उस दिन बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अल्लाह अकबर, इस उम्मत का तो मसला ही खाना पीना बन गया। हालांकि खा खा के हमारे हाल ये हो रहे हैं कि हमें उसको समझ नहीं आती कि अब इसको बर्न कैसे करें, अब इस जिस्म के ऊपर जो वेट चढ़ गया इसको उतारें कैसे। ये हाल हो गया खा खा के, फिर भी हालत ये है कि नियत खाने पे ही लगी हुई है, खाने के पीछे ही मरे चले जा रहे। सबसे पहले हमारा मसला ही क्या होता है, खाना पीना, और ये तो उनके काम थे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में भी आपने कभी देखा कि कोई हदीस कोई ये आपको मिल रही हो कि उनको खाने की बड़ी फिक्र थी? वो खाने में ये पकाते थे, खाने में वो खाते थे, वो खाने को ऐसे करते थे, उनको खाने के लिए ये क्या, क्या आपने ये देखा? एक बामकसद इंसान जो होता है ना, ठीक है वो भी खाता है मगर जरूरत के तहत, ये नहीं कि उसकी जिंदगी खाना पीना बन जाए। हमारी तो जिंदगी खाना पीना बन गई है। खाने से मना नहीं किया गया, कुलू वशरबू तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, लेकिन खाने में ही टाइम लगाते रहना, नए नए चटखारों की रेसिपीज ट्राई करते रहना। अब टीवी चैनल्स के भी आगे बैठ के कुकिंग की रेसिपीज लिखती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, उसी से कॉपियां भरी जा रही हैं। फिर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे वैरायटी ही चाहिए डिशेस में। दोपहर को जो खाना खाया वो रात को नहीं हमने खाना, कल जो खा लिया था वो अगले दिन नहीं हम खा सकते, रंग बिरंगे हमें खाने चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं हाय टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त कहां से मिलेगा? क्या फिर ऐसे शख्स को वक्त मिल सकता है पढ़ने पढ़ाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए, जिसको यही है कि आज क्या पकाना है, ग्रोसरी कहां से लाऊं, फिर उसके बाद पहले ग्रोसरी लेने गए, फिर उसको पकाने के लिए वक्त चाहिए, फिर सर्व करने में वक्त चाहिए, फिर उसको उठाने में वक्त चाहिए, फिर बर्तन धोने में वक्त चाहिए, फिर सफाई सुथराई में वक्त चाहिए किचन की, फिर समेटने संभालने में वक्त चाहिए, तो आपका आधा वक्त तो किचन की नजर हो गया। हज़रत आयशा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा खाना खाते हुए देख लिया तो आपने फरमाया ऐ आयशा, इसके सिवा के तुम्हारे पास कोई और शुगल नहीं, कि इसको तुमने शुगल बना लिया दूसरी दफ़ा खाना खाते हुए। हज़रत आयशा फरमाती हम दो काली चीज़ों पे गुजारा करते थे, महीनों गुजर जाते थे, एक चांद के बाद दूसरा देख लेते थे, पानी और खजूर, दो चीज़ों के ऊपर गुजारा होता था। और हमारे हाल क्या है, हम तो एक दिन का पड़ा हुआ खाना अगले दिन नहीं खा सकते, ये क्यों खाएं, बोर हो गए। तो फिर कहां से वक्त निकलेगा आपके लिए, कहां वक्त है फिर? वह जाहिर सी बात है, फिर खाओ और खाओ और खाओ, यही हाल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें एक हदीस है इतनी प्यारी, अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अबू हुरैरा से फरमाया अबू हुरैरा मैं तुझे दुनिया दिखाऊं? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मदीना के बाहर एक जगह थी, वीराना सा था, वहां ले गए। वहां पे एक जगह खोपड़ियां पड़ी थी, एक जगह ह्यूमन वेस्ट था, हड्डियां थी, चीथड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा ये खोपड़ियां जो थी ना, ये भी ऐसी चाहत किया करती थी जैसे तुम करते हो, ये आज देखो कैसी हो गई, इन पे एक चमड़ा भी बाकी नहीं है, स्किन भी नहीं है, अब चंद दिन में ये राख हो जाएंगी। और ये पाखाना जो तुम देखते हो ना, ये इनकी गिजा थी, ये वो फूड था, पता नहीं कहां कहां से कमा के खाया था, आज ऐसा हो गया कि तुम इसे नफरत करते हो। और ये चीथड़े, ये इनका लिबास है कि हवा इनको उड़ाए फिरती है। और ये हड्डियां जो है इनकी चौपायों की हैं, जिन पे चढ़ के ये शहर शहर फिरा करते थे। तो ए अबू हुरैरा, जब ये अंजाम है दुनिया का तो फिर इबरत पकड़ो। तो अबू हुरैरा फरमाते ये मंजर देख के हम खूब रोए, और जब तक खूब रो ना लिए तब तक यहां से नहीं लौटे। दोनों बैठ के रो रहे, हालांकि उनकी दुनिया गया थी। हमारे वक्त की दरगुजर है, बताए खुद सोचे, अल्लाह ने हमें उस आला जन्नत के लिए पैदा किया और हमें इस अदना दुनिया के लिए उस आला को छोड़ रहे। हर एक चीज में देखें, अपने वक्त में देखें, अपनी सलाहियतों में देखें, अपने और कामों में देखें, कहां कहां मैं आला को छोड़ के अदना ले रही हूं, मैं ये कैसा सौदा कर रही हूं। बनी इसराइल के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है, याद रखें। ये क्लास में ऐसे भी गुजार सकती थी, देखें बनी इसराइल ने ये किया ये किया ये किया, और आप कहें कितने बुरे थे वो, कैसे थे कैसे थे, मगर अपने गिरेबानों में भी तो जरा झांक के देखो, तुम किधर किधर अदना ले रहे हो और आला छोड़ रहे हो। कदम कदम पे हम ये सौदा कर रहे हैं और एहसास भी नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है। वक्त अदना को दे रहे हैं, आला को छोड़ रहे हैं। हमारे सारे शौक, हमारी भाग दौड़, हमारी मेहनतें, हमारा जोश, हमारी ये लगन है ना, जो ये इंथुजियाज्म है, वो सब अदना के लिए यूज हो रहा है, आला के लिए कहीं नहीं यूज हो रहा। अदना के लिए हम कितने पुरजोश होते हैं, आला के लिए क्या होते हैं? हिम्मत नहीं है, कमजोरी है, जहन कमजोर, बुढ़ापा है, बीमारी है, वक्त नहीं है। आला के लिए हमारे पास सब ये जवाब है, लेकिन अदना के लिए देख लें कैसे भागे फिर रहे हैं। इस हदीस ने तो हकीकत खोल दी ना, गाड़ियों के देख लें जहाँ पे स्क्रैप्स होते हैं, जंक यार्ड होते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ, ये वो सवारियाँ जिनको कभी लोगों ने ख़रीदा होगा तो कितना फ़ख्र किया होगा कि मैंने लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ख़रीद ली। और कभी चले जाएं वहाँ जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं ये शहर से बाहर, देख लें ये वही चीज़ें हैं जो लोग कभी बड़े शौक से घर में लाए होंगे, फ्रिजों में रखी होंगी या सजाई होंगी घरों में, वो देखें कैसे पड़ी हैं। इनके पीछे हलकान हो रहे हम। आज हम सब ये तो बहुत कहते हैं, हाय वो काम रह गया, मेरा ये काम रह गया, बहुत लंबा टाइम इसमें लग रहा है क्लास में। हमारी नज़र इस पे है जो रह गया हमारा काम, उस पे नहीं है जो हमें मिल रहा है, जो सबक हमें यहाँ से मिल रहा है, जो हम यहाँ से हासिल कर रहे हैं। जितनी आला चीज हमें ये मिल रही है उसके ऊपर नहीं हमारी नजर होती, वो जो अदना रह जाता है ना उस पर बहुत नजर होती है, उस पर बड़ा गम होता है, हाँ ये काम रह गया। वो अदना को छोड़ते नहीं है, वो अब देखे क्लास हो रही है और वो अदना के पीछे फिर भाग रहे, नहीं वो वाला काम भी हो जाए, वो वाला भी जाए, कोई वो ये तो सुनती ही रहूंगी, ये तो साथ साथ चलता रहे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फुल टाइम तो इसको नहीं दे सकती कि मैं पूरे दिमाग के साथ बस बैठ जाऊं, मेरे और भी काम है। अदना के तो बहुत काम पड़े हैं मेरे, आला की खैर है। इतना एहसास ही नहीं कि कितना बड़ा खजाना, ये प्राइसलेस चीज मुझे मिल रही है, प्राइसलेस। जैसे उनको वो फ्रीडम प्राइसलेस मिली थी ना, उसको छोड़ के वो इस अदना, उस गुलामी के दिनों की वो ऐसी चीजों को याद कर रहे हैं। इसी तरह हमारा भी हाल है, आला चीज मिल रही है इसकी कदर नहीं है, अदना के जाने का गम बहुत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे साथी थे ना, अल्लाह हमें ऐसा बनाए कि जो आला को अदना पे प्रेफर करते थे। सहाबा कराम की जो जान निसारियां है ना, ये जज्बाती तौर पे नहीं पैदा हो जाती, ये आप कहें कि हाँ वो जज्बाती, क्योंकि जो जज्बात होते हैं ना वो वक्ती होते हैं। अब जैसे आप एक दावा प्रोग्राम सुनते हैं फिर आप जज्बाती हो जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद जज्बात ठंडे हुए, घर गए, आपने कहा ये कर मैंने क्या लिया, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, मुश्किल में आ गई मेरी जान कि मुझे भी इस क्लास में जाना पड़ेगा। जज्बात जल्दी ठंडे हो जाया करते हैं। उनकी ये जान निसारियां याद रखें, ये जो आज हम बड़े उछल उछल के कहते ना, हाँ ये हम भी उस जमाने में होते तो कितना अच्छा होता, वो कुछ नहीं होता, ये जज्बात जो है ना, ये जज्बात एक आध दिन के होने थे, उसके बाद फिर वही रूटीन, जिसके दिल के अंदर दुनिया बसी पड़ी हो और दुनिया की मोहब्बत से उसका दिल फिल्ड हो, वो कहां से ये दिखाएगा जान निसारियां। ये जो उनका था ना, ये टेम्परेरी नहीं था, ये उनका पूरा लाइफस्टाइल था, ये उनका लाइफस्टाइल था। जब आखिरत दुनिया के मुकाबले में आगे हो जाती है ना, तो तब ऐसी कुर्बानियां देना आसान होता है जो उन्होंने दी। लेकिन ये देखें बनी इसराइल को, उनको अदना इतनी अजीज है कि वो आला को भूल गए। उनको अल्लाह ने घरों से किस लिए निकाला था, कि बैतुल मकदस को फतह करें, अपना खोया हुआ मकाम वापिस लें, वो इज्जत, वो मकाम, वो इनको अल्लाह ने दोबारा दिलानी थी। मगर इनको तो दुनिया की लज्जतें इतनी अजीज हैं, आला मकसद ही भूल गए, गुम हो गए खाने में पीने में, जैसे हम आज पूरी उम्मत ही खानों में गुम हो गई है, खानों में, ऐश में, लज्जतों में, ये सिर्फ हमारा मकसद रह गया। लेकिन जब इंसान को ये याद होना कि मेरी इस जान का मालिक मेरा रब है, और मैं उस रब के लिए हर चीज कुर्बान कर सकती हूं। जब वही मालिक है तो फिर कुर्बान करना आसान हो जाएगा। फिर इंसान सबसे ज्यादा अपने ऊपर अपने रब का हक समझता है कि मैं अल्लाह की हूं, और इसकी खातिर तो ये छोटी छोटी चीजें लेट गो करना कोई मुश्किल नहीं है। तो कीमती इंसान वही है जो अल्लाह की खातिर आला को अदना पे प्रेफर करे, बाकी सब क्या है, बेकार है। प्रेशियस इंसान सिर्फ वो है। यह भी तू मिस्र, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उतर जाओ किसी भी शहर में चले जाओ, बस फिर क्या है, अगर तुम्हें यही चाहिए और जाओ फिर किसी भी शहर में तुम्हें ये मिल जाएगा, फइन्ना लकुम मा साल, तुम जो तुमने मांगा है ना फिर वो तुम्हें मिल जाएगा। ये नहीं फरमाया कि ये फूम और आदर्स और ये मिलेगा, इसमें भी बड़ी गहरी बात है। फइन्ना लकुम मा साल, तुम्हें लगता है वो, यानी आप इसके पीछे उनका एक गहरी बात को समझे, लगता है तुम्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जिस वक्त तुम्हें वहां पे वो टॉर्चर किया जाता था, जूते पड़ते थे वहां पे, तो तुम लगता है उसको याद कर रहे हो। जाओ तुम किसी शहर में उतर जाओ, तुम्हें वो ही मिल जाएगा जिसको तुम बड़े याद कर रहे हो, यानी वो ही जिल्लत, वो ही एक बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, ये सब मिल जाएगी तुम्हें। जाओ किसी भी शहर में चले जाओ, जाहिर है डेजर्ट में तो फिर वो नहीं मिलना था ये अफूम और अदस और ये, तो वहां पे जाओ किसी शहर में जहाँ पे जाहिर है बस्तियां होती वहीं पे उगते, जहाँ पे खेती बाड़ियां होंगी वहां पे होंगे। तो उन्होंने मिस्र का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया कि जैसे उनको याद दिला रहे हैं कि ठीक है उसी जिल्लत में जो मिस्र में तुम्हें मिलती थी ना, उसी जिल्लत में वापस जाओ। तना अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम कितने ना शुक्र हो। हम देखे हमारी जिंदगियों में, सुभान अल्लाह, हमारी जिंदगियों में हमें मनोसलवा मिल रहा, बहुत कुछ मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है और बहुत आसानी से मिल रहा है, जो शायद दूसरे मुल्कों में लोग उसके लिए, उस चीज के लिए यानी बहुत तरसती हूँ। हमें कितनी आसानी से वो सब नेमते मिलती हैं, फिर भी हमारी नाशुक्री ख़त्म नहीं होती, हम में नाशुक्री बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी शिकायत नहीं ख़त्म होती। और ये मनोसलवा लेकर उसके बाद तो शुक्र गुजारी और अल्लाह की इताअत और उसकी हुक्मों की बजावरी में और ज़्यादा हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं और पीछे हैं, क्योंकि हम इतने गुम हो जाते हैं उन्हीं नेमतों में कि अब किसके पास फुर्सत है अल्लाह के लिए। हमें बैठे बिठाए बेहतरीन गिजा, बेहतरीन आराम, बेहतरीन हर चीज लग्जूरियस मिल रही है, ना कोई बिजली का मसला, ना पानी का मसला, ना कोई और सफाई सुथराई के मसले, ना कोई और मिलावट और इस चीज की प्रॉब्लम्स, ना कोई और ऐसी प्रॉब्लम के कोई अल्लाह माफ कर को बाहर आग लग रही है, कोई कहीं चोरी डाके हो रहे हैं, कोई कत्लो गारत हो रही, ना इस तरह के कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर हमारा क्या हाल है। तो जो ना शुक्री करते हैं ना, फिर जाओ चले जाओ। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इस सारे का नतीजा, ये जितने भी इनके गुनाह बताए गए, जो इनके काम बताए गए, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम बताया गया, उसके बाद कंक्लूजन में क्या बताया अल्लाह ताला ने, इसका कंक्लूजन ये है कि वदुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, अल्लाह की तरफ से मार दी गई इनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत। ज़िल्लत कैसी, इतनी जिल्लत कि उसके बाद इनके ऊपर बहुत इनको मार पड़ी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह इनको फिर उसके बाद जलील होना पड़ा, इनकी तो बुक तक खत्म कर दी गई तौरात, हजारों हजारों की तादाद में इनको कत्ल किया गया। कैसे कैसे बादशाह इनके ऊपर आए और इनको जलील और रुस्वा कर दिया। और मस्कनत, मस्कनत मैंने आपको जैसे बताया कि एक इंसान ऐसा हो जाए ना कि अब उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि अब वो अपनी इस सिचुएशन को बदल सके। अल्लाह अकबर, मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी बात नहीं है, हमारी बात है। हम भी ऐसे ही एक स्पाइरल में फंस गए हैं कि ऐसे लगता है कि इस जिल्लत से आप निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। क्या ऐसे नहीं लगता कि ये जैसे हमारे ऊपर मार दी गई है जिल्लत और मस्कनत? दुनिया में जहां चले जाए, जिसको पता चल जाए कि आप मुसलमान हैं, जिल्लत ही जिल्लत है। और मस्कनत कैसी है कि अब समझ ही नहीं आती इससे निकलें कैसे, कोई पावर ही नहीं रह गई। इस मस्कनत का मतलब कम हिम्मती ना, इंसान की हिम्मत जवाब दे दे, वो कुछ कर ना पाए कि मैं इसको कैसे बदलूं, इसमें से कैसे सिचुएशन से निकलूं। तो जैसे इनकेपेबल है ना अपनी सिचुएशन को चेंज करने, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ये ख्वाहिशात के पीछे, खाने पीने के पीछे, इनके पीछे दौड़े, अदना के पीछे दौड़े, आला को छोड़ के, तो इनको क्या मिला? आज उम्मते मुस्लिमा भी जब ख्वाहिशात के पीछे, माल के पीछे, खाने पीने के पीछे, दुनिया के पीछे भागी है, तो क्या मिला है? अरूज मिला है कि जवाल? बुलंदी मिली या पस्ती? हम तो सोचते हैं इसके पीछे भागेंगे तो बुलंदी मिलेगी। बदहाली मिली है या खुशहाली? क्या मिला है हमें? और फिर और तो और, वहां पे तो फिरौन के गजब के अंडर थे ना ये, वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गजब के साथ लौटे, चले जाओ, धुतकार दिया गया, जाओ चले जाओ, जाके किसी शहर में जाके बसो और जाके वहां से फिर ले लेना जो तुमने सवाल किया। अब ये जो आयत का ये जो हिस्सा है ना, ए भी तो मिस्र फाइना लको मासाल तो, अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप पीछे आइए आयत नंबर 58 देखें, और इज कुल नदखुलू हाذه القريه تفكلوا منها حيث شئتم رغدا। तो ये भी कहा जाता है इस इन आयात के बारे में कि हो सकता है ये आयात उस वक्त की हो जिस वक्त इनको कहा ना ए भी तू मिसरन, अब जाओ चले जाओ किसी शहर में, तो अब जब ये शहर में दाखिल होने लगे हैं तो उनको कहा गया कि अब ठीक है तुम यहां से खाना जो भी खाओ, लेकिन देखो आजी के साथ और इस्तगफार करते हुए जाना। लेकिन उन्होंने वहां पे भी ये उल्टी हरकत की। और दूसरा इसके बारे में वही है जो मैंने आपको बता दिया था जब आयत 58-59 पढ़ी थी, ठीक है। और ये वाला भी जो मुफस्सिरीन ने दूसरी बात कही है वो मैंने आज आपको बता दी। ज़ालिका, ये सब क्यों हुआ? कि अल्लाह का गजब देखें कितनी एक बड़ी बात है कि इस आयत में तो मेरे ख्याल में इंसान ये सोचता है कि यहूदी तो क्या, मुसलमान ज़्यादा इस आयत के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, वो तो आज दुनिया के अंदर फिर भी ऊपर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो गज़ब और उनके ऊपर ये हुआ अल्लाह का गुस्सा, तो फिर आज वो दुनिया में कैसे इतने वो हैं। आयत 112 है सूरह आले इमरान में, दुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु अइनमा थुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, कि इन पर थोप दी गई, मार दी गई जिल्लत जहां कहीं भी जाएंगे, मगर अल्लाह की तरफ से जब अगर अल्लाह की ये रस्सी को थाम लें, यानी या तो ये इस्लाम ले आए या फिर आदमियों की तरफ से, इंसानों की तरफ से कोई रस्सी को थामे, कोई जरिया बने इनके लिए, तो ये जिल्लत से निकल सकते हैं। और आज देखें कई सुपर पावर्स इनके लिए जरिया बनी हुई है, इंसानों के वो थाम के ताल्लुक के साथ ये थोड़े बहुत जो खड़े हुए में वाहिदे कर कुर के इधर उधर से, तो ये तो कुरान कहता है। हो लेकिन अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इनके ऊपर अपना गुस्सा, जिल्लत और मस्कनत थोप दिया। क्यों ऐसे हुआ है? क्यों? ज़ालिका, ये सुन ले, ज़ालिका ये इस वजह से हुआ है कि कानू यकफुरूना भी आयात अल्लाह, सुन ले ज़रा, सबसे पहली बात ही अल्लाह की आयात की आ गई। हम तो अपनी किताब को, इसकी आयतों को कुछ समझते ही नहीं है ना। वो देखें हम ये सोचते हैं इनको ना भी इनके ऊपर अमल किया, इनको छोड़े रखा, तो कोई इतनी परवाह ही नहीं है। फर्ज है क्या ये? ये फर्ज है ये कुरान पढ़ना? कहां पे लिखा हुआ फर्ज है? पहले हमें ये दिखाए ना, इसकी दलील दिखाए। हम तो इसी आर्ग्यूमेंट में पड़े हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उनके ऊपर ये जिल्लत और मस्कनत और ये अल्लाह का गजब क्यों हुआ? ये करते रहे थे कुफर अल्लाह की आयात का। तो क्या वो कहते थे हमने तौरात का कुफर किया, हम नहीं मानते तौरात को? नहीं, वो तो तौरात मानते थे। बड़ी एहतराम इन्होंने किया तौरात का, बल्कि इनके तौरात के उलमा थे और तौरात इन्होंने याद की थी और फिर तौरात को बड़ा इज्जत के साथ रखते थे। लेकिन क्या करते थे, क्या करते थे? जहां पे दिल चाहा अमल कर लिया, जहां पे दिल चाहा छोड़ दिया। पहले पढ़ चुके हैं ना ये बात। और क्या करते थे? बदल देते थे उसके अहकामात को। हमारे यहां लफ्जों को तो नहीं बदल सकते, मगर उनके मानों को बदल देते हैं, अपनी मनमानी इंटरप्रिटेशंस करते रहते हैं। और क्या करते थे ये? जब उसको पर अमल ही नहीं करना तो उसको उसका इनकार ही करा ना उन्होंने। जिस चीज को इंसान मानता है उसके ऊपर तो चलता है, मगर इन्होंने उसका कुफर किया और यही करते रहे। देखें ये अल्लाह की किताब अगर बंद है ना तो उसका एहतराम करना बड़ा आसान है बंद किताब का, लेकिन बात तो तब है कि किताब खुली हो और तब उसके ऊपर चलें और उसका ये एहतराम करें, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। किताब जहां खुलती है ना वहां हम भाग जाते हैं। कैसे इसके ऊपर अमल करेंगे? बस इतनी इज्जत करा लो बंद किताब की, दैट्स इट। आज सोचे कितने हमारे लोग हैं जो इस किताब के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो इस दुनिया से, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब दुनिया से चले गए हैं इस किताब को समझे बगैर, सीखे बगैर, जाने बगैर। उनका कुफर ये नहीं था कि वो मुंह से बोलते हो हम नहीं मानते तौरात को, ये नहीं था उनका कुफर। वो किताब से दूर थे। किताब उनके पास उलमा के पास होती थी, आम लोग तो किताब को जानते ही नहीं थे, बस उन्होंने भी रखी हुई थी अदब और एहतराम के लिए, दैट्स इट। सब एक्सेप्ट करते थे कि हम तौरात, तो उनके लिए बहुत काबिल एहतराम थी। लेकिन क्या उन्होंने इसके ऊपर चले, इसको समझा, इसको सीखा, इसको माना इस लिहाज से? नहीं, बस ऐसे मनवा लो बेशक के हाँ ठीक है तौरात पे ईमान लाए हैं जुबानी कलामी, जैसे हम कुरान पे ईमान रखते हैं जुबानी कलामी, लेकिन इससे आगे क्या है हमारी अपनी जिंदगियों में देख ले। अभी तक डावाडोल है कि ये नहीं अभी तक पता बाज लोगों को कि हमने इसको सीखना है और कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बगैर। अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि हाय करें कि ना करें, हाय मुश्किल हो जाएगी, चलो बाद में कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। अभी तक वो इन्हीं सोचों में है। और हमारे कितने इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अभी तक इसके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने उन तक भी नहीं पैगाम पहुंचाया, क्योंकि हम खुद ही इसके बारे में अभी डाउटफुल हैं, दूसरों तक कैसे बात पहुंचाएंगे? जिसका खुद का दिल शरा सदर हुआ हो ना, जिसका खुद सीना खुल गया हो इस किताब के लिए, इस कलाम के लिए, फिर वो तो जरूर आगे जाके, जिसके अपने अंदर आग लग जाए ना, फिर तो वो जरूर आगे जाके बताएगा। और जो खुद ही ठंडा पड़ा हो वो क्या बताएगा, वो क्या कहेगा? तो उनका कसूर ये है कि कंटिन्यूसली वो कुफर करते रहे हैं, एक दो दफा नहीं, बस उनका काम ही यही था, जिंदगियां गुजार दी और ऐसे ही गुजार दी, ऐसे ही चले गए। वयक्तुलून नबीयीन बिगैर अलहक, और नबियों को कत्ल कर डालते ना हक। यानी एक तो ये उनका काम था कि नबियों को बजाय इसके कि उनका एहतराम करते, उनकी इताअत करते, वो उनको कत्ल कर देते थे। क्यों? इसलिए कि वो किसी की नसीहत की बात नहीं सुन सकते थे, इसलाह की बात सुनना गवारा नहीं, ना रहेगा सांप ना क्या थे वो, ना रहेगा सांप ना बजे की बांसुरी, क्या है ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी वाली बात है कि इनको ही खत्म कर दो ताकि हमें को नसीहत ही ना करे। अगर जब इंसान को बुरा लगता है कि ये मुझे क्यों कह रहा है कि ये ना करो वो ना करो, इस चीज से मना कर रहा है इसे, ये रोक टोक हमें नहीं पसंद, इसी का पत्ता साफ कर दो, ना ये रहेगा ना इसकी रोज की ये बातें सुननी पड़ेंगी। तो उन्होंने कत्ल कर दिया नबियों को, और एक को नहीं दो को नहीं बहुत सारे नबियों को इन्होंने कत्ल किया। रिवायात में आता है कि ये इतने बेहिस थे कि नबियों को कत्ल कर देते थे और उसके बाद शाम को सब्जी बेचने बैठ जाते थे, इनको ये भी नहीं एहसास होता था कि हमने आज कोई बुरा काम किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक एक बनी इसराइल उनमें मौजूद 300-300 नबियों को कत्ल कर डालते थे, एक एक दिन में बनी इसराइल उनमें मौजूद 300-300 नबियों को कत्ल कर देते थे, फिर बाजारों में जाके अपने लेन देन में मशगूल हो जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्यामत के दिन उस शख्स को होगा जिसको जिस किसी नबी ने कत्ल किया हो या उसने किसी नबी को कत्ल किया हो। ये इनकी नाफरमानियों का, इनकी जुल्म ज्यादती का बदला था। कि इनको फिर गजब जिल्लत मस्कनत इसका सामना करना पड़ा, क्योंकि ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बात पहुंचाने वाले हैं। तुमने इनकी बात को मना करने का मतलब ये कि अल्लाह की बात को मना करना, और फिर बगैर हक, एक तो कत्ले नबी और दूसरे फ्रॉड के साथ धांधली के साथ नबियों को कत्ल, ये नहीं कि कोई जेन्युइन रीजन, कोई इस तरह कोई बात उनके ऊपर आए कि ये सही, कोई उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाए, नहीं वो भी नहीं था, कोई कोई प्रूफ कोई कुछ ऐसी बात नहीं होती थी, बस कुछ भी बात कह के और उनको ऐसे ही कत्ल कर देते थे। अच्छा, उन्होंने नबियों को कत्ल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी नहीं आना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाहिर है जो नबियों का काम आगे करने वाले हैं आइम्माए दीन उलमाए कराम, उनको कत्ल किया जाता रहा है, जो मुजद्दीन उम्मत है उनको कत्ल किया गया, कईयों को जेलों में डाला गया। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि उनको इतना मारा गया, इतना मारा गया कि कहा जाता है कि हाथी को भी ऐसी मार मारी जाती तो वो बर्दाश्त ना कर सकता। इमाम अबू हनीफा जेल में उनका इंतकाल हुआ था और वहीं से उनका जनाजा उठा था। इमाम मालिक उनके कंधे खींच दिए गए थे और उनका मुंह काला करके उनको ऊंट पे बिठा के फिराया गया था। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे दास्तानी है। मुजद्दद अल-फ़सानी को, उनको दीवार के पीछे चुनवा दिया गया था। ये हमारी हिस्ट्री तो ऐसी दास्तानों से भरी पड़ी है। तो अब नबी तो कोई नहीं आएगा, मगर ये जो उलमाए हक है, जो नबियों का मिशन लेके आगे चलने वाले हैं, उनके साथ क्या सलूक हुआ। आप देखें आज भी कई उलमा, कई बड़े बड़े स्कॉलर्स को कत्ल कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता बाद में कि किसने किया। कई नाम आपको अगर याद भी हों तो उन्होंने तो नबियों को कत्ल किया, हमने नबियों के मिशन को आगे ले जाने वालों को कत्ल कर दिया। ये काम ना करते, अगर इनके जमाने में कोई पैगंबर होते ना तो इन्होंने भी नहीं काम करना था। वो तो शुक्र है कि आप किसी नबी ने आना ही नहीं है। ज़ालिका बिमा आसाऊ वह ख्यानू या तदून, अल्लाह ताला ने चार इनके वजूहात बयान फरमाई हैं। नंबर वन, ये कानू यकफुरू नबी आयत अल्लाह, पहली बात ही अल्लाह की आयात का कुफर है। उसकी वजह से सोच ले किसी उम्मत के ऊपर अल्लाह का गजब होता है जब वो कुफर करती है अल्लाह की आयात का, जिल्लत होती है, मस्कन होती है। दूसरी क्या चीज, कत्ल नबियों का, जो अल्लाह ताला के दीन के मिशन को आगे पहुंचाने वाले, अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने वाले, इनको बेकसूर ना हक कत्ल कर देना, ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह की तरफ से जिल्लत होती। और क्या, तीसरे नंबर थ्री क्या है, ज़ालिका बिमा आसौ, ये इस वजह से कि उन्होंने वो नाफरमानी करते थे, कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। आप देख लें पीछे, वो
जब उन्होंने कहा इस दरवाजे में दाखिल होना, इस तरह से उन्होंने उलट करके दिखाया। वकानू यातदून, और वो ऐसे करते ही थे कंटिन्यूसली, दे हैव बीन गोइंग आउट ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स क्रॉस करना उनका काम ही था। अल्लाह ताला के अहकामात है ना, उनकी एक लिमिट्स होती है, एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर आपने रहना है, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। वो लिमिट्स क्रॉस करते थे। या तदून किससे? अदुव से, आइन दाल वाव। अदुव कौन होता है? अदावत क्या होती है? पहले बताया था आपको, दुश्मन, दुश्मनी, अदावत। तो दुश्मनी में भी इंसान हद से निकल जाता है ना, तो या तदून हद से निकल जा, हदें पार कर देते थे, यानी नाफरमानी में भी किसी लिमिट पे नहीं रुकते थे। कैसे न डर लोग थे कि इनको कोई खौफ नहीं था अल्लाह का। आयत बहुत कुछ बताती है हमें, और ये चार बातें तो खास तौर पे नोट करने वाली हैं, जो इनके चार जराइम थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर जिल्लत और मस्कनत तारी कर देता। कोई वजह होती है, अल्लाह का गजब ऐसे ही नहीं टूटता। फिर हम कहते हैं क्यों हम जलील हो रहे हैं, या अल्लाह सारी दुनिया में हम तेरे नाम लेवा, हम मुसलमान, अल्लाह ताला को हमारी मदद करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने उनको इतना अरूज दिया हुआ है, हमारे ऊपर जवाल है हम, तो तुम्हारे कोई करतूत ऐसे होंगे जो ऐसा हुआ है ना? ये भी तो देखो, अपने गिरेमानों में भी तो झांको। नहीं, हम तो हर वक्त मजलूम है। एक तो ये नहीं समझ आती कि हम हर वक्त मजलूम क्यों बने रहते हैं। एक तो इस मजलूमियत से खुदा के लिए निकले। हाँ, हर बात सोचते हैं फलाना हमारे खिलाफ साजिश, फलाना हमारे खिलाफ साजिश, वो हमारे खिलाफ है, वो हमारा दुश्मन है, वो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर हमारी फिंगर टिप्स पे उनके नाम है, बस ये मुल्क, ये लोग सब कुछ यही करते हैं, मगर हम तो इतने मजलूम और इतने मासूम हैं कि हम तो कुछ, वो कोई नहीं कुछ कर सकता जब तक कि आप खुद गलत ना हो। आप खुद गलत होते हैं, आपने खुद जुल्म किया है, तो तब ये हुआ है। उम्मत मुस्लिमा का अपना कसूर है तो ये हुआ ना, या नहीं? अब वो भी कह देते हैं ये तो सारा कसूर इसका है, ये तो फलाने का है, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम का कसूर है, ना ये हमें लेके वहां से चलते, ना हमारे पर ये जिल्लत होती, ना अल्लाह का गजब होता। ये कह सकते थे ना, हम तो फिरौन के पास बैठे हुए थे, चलो ये तो नहीं थी ना, वहां पे मजलूम ही थे ना, ये जिल्लत और मस्कनत तो नहीं हुई जो हमारे पर बाद में हुई है। हमें अब मसला हमारा ये हो गया, प्रॉब्लम यही हो गई कि हमें मजलूम बनने का शौक हो गया, अपने ऊपर तरस खाने का, सेल्फ पिटी में ऑल द टाइम अपने ऊपर तरस खाते रहते हैं। नहीं, तरस खाने का वक्त नहीं है, अपनी इसलाह करने का वक्त है। अल्लाह की तरफ से हमारे पर मारी गई है ये जिल्लत और मस्कनत, और अल्लाह का गजब आया हुआ है हमारे ऊपर, और वो हमारे अपने कामों की वजह से आया हुआ है। अल्लाह जालिम नहीं है। हम ये जानते हैं ना कि हर चीज भी इज़्ने अल्लाह होती है। अगर किसी तरफ से हमें मार पड़ती भी है तो वो भी इस वजह से कि हमारे अपने कसूर हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता था। आप बाद में देखेंगे इनकी हिस्ट्री में, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी बुख्त नसर ने कैसे इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी और क्या इनका हाल किया था। वो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जिल्लतदारी की थी। किसी बादशाह के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो किसी को ऐसे कर सके। इनके अपने कामों की वजह से इनके अपने कसूर थे। तो जब कोई उम्मत इतने बड़े मनसब के ऊपर जो फाइज हो, इतने बड़े ऑनरेबल काम उनके जिम्मे हो, और वो पड़ जाए दुनिया के पीछे, वो पड़ जाए अदना के पीछे, उसके पीछे भाग रही है, आला को उसने छोड़ दिया, तो उसके साथ फिर यही काम हुआ करता है। लेकिन अभी तक हम अपनी इस बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सके कि हमारा कोई अपना कसूर है या हम अपनी कोई इसलाह करें। बस हम हर वक्त रोना 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 ये हमने काम बना लिया। मीडिया भी हमारे खिलाफ हो गया, फलाना भी हमारे खिलाफ हो गया, ये सब का कसूर है। हमारा तो कोई कसूर नहीं ना, वाकई हम तो परफेक्ट है ना। अगर वाकई ऐसा है ना, तो फिर तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, और अल्लाह जालिम नहीं है। जो जिल्लत हमारे पर आई भी है, इसको माने कि हमारे अपने आमाल हैं, हम सब के आमाल हैं, हम सब की कंट्रीब्यूशन है इसमें, वरना ये हाल ना होता हमारा। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये नहीं कि बनी इसराइल की हिस्ट्री को दोहरा के और फिर हम बस उनके ऊपर جو لگی ہوئی الزامات ہیں ان کو بس سن کے اور بس ہم کان بند کر لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قانون پتہ چلے، اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اور وہ سب کے ساتھ وہی ہے، یہ قاعدہ قانون اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ سب کے ساتھ سیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو ایسا ہوا اور ہم تو اتنے چنے ہوئے لوگ ہیں نا، ہمارے ساتھ تو کوئی اسپیشل سلوک ہو رہا ہوگا۔ آگے پتہ چل جائے گا آپ کو، آگے ہی آیتیں آ رہی ہیں کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی امتیازی سلوک ہوگا۔ تو یہ اس سے نکلیں، کیونکہ اللہ کا قانون جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا وہی اگزیکٹلی دوسری امتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کو اللہ کو یہ تھوڑی تھا کہ بنی اسرائیل اس کے بندے نہیں ہیں، آپ ہی اس کے بندے ہیں، ان سے اس کو نفرت ہے اور ہم سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ ہی کے بندے تھے، آپ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے۔ تو اس سے سیکھیں، اس سے سمجھیں، تلاوت لگائیں یہاں تک، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔